नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना का पहला चरण शुरू। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वगणना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। कहा, पलायन रोकने के लिए श्रमिकों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार दिया जाए कौशल प्रशिक्षण। प्रदेश के 7 जिलों में हुई मॉकड्रिल। चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों और समन्वय क्षमता को परखा गया। और पिथौरागढ़ में मेरा सपना मेरा लक्ष्य का 4th संस्करण आयोजित। छात्राओं को मिला प्रशासनिक अनुभव और करियर मार्गदर्शन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोकभवन में स्वगणना के माध्यम से इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें और स्वगणना के माध्यम से सटीक और पूरी जानकारी दें।
भारत की जनगणना 2027 की शुरुआत की है। पहले फेज के अंदर में घरों की गणना होगी और मेरी हर एक प्रदेशवासी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके अंदर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जनगणना से हमारा जो डाटा है, हमारी जो विश्लेषण है, हमारी जो प्लानिंग है, उसमें एक खास वृद्धि होगी।
इस अवसर पर केंद्रीय जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तराखंड में पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल से 24 मई तक किया जाएगा। घर घर सर्वेक्षण से पहले प्रदेशवासियों को आज से 24 अप्रैल तक स्वगणना की सुविधा प्रदान की गई है। इस अवधि में नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर स्वयं और अपने परिवार की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज कर सकते हैं।
आज से आधिकारिक रूप से जनगणना की फेज वन की शुरुआत उत्तराखंड में हो गई। माननीय राज्यपाल महोदय ने खुद से ही स्वगणना की, पूरे पोर्टल में उन्होंने खुद से ही सारी एंट्री की और आज से शुरुआत है। 24 अप्रैल तक 15 दिनों के लिए स्वगणना का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन अगर कोई गणना करने से रह जाता है तो उसको परेशान होने की कोई बात नहीं है। 25 अप्रैल से लेकर के 24 मई एक महीने का जो समय है, जिसमें घर घर फील्ड कर्मचारी, जिनको प्रगणक एन्यूमरेटर कहा जाता है, वो जाकर के फिर लोगों की गणना करेंगे। इसमें मैं एक बात और बता दूं कि किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही स्वगणना करने के लिए, ना ही जब फील्ड कर्मचारी आपके घर आते हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट को दिखाने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही इजी सिस्टम है, जो जन कल्याण के लिए ही जनगणना की सारी जो प्रणाली है उसी तरीके से बनाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विकसित श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। साथ ही करीब 8,000 श्रमिकों के खातों में 17 करोड़ रुपए से अधिक राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया। इस अवसर पर उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों को श्रमिकों और उनके आश्रितों के कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए स्थानीय श्रमिकों को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री, कारपेंटर आदि क्षेत्रों में कौशल प्रदान किए जाएं। इसी तरह योगा और वेलनेस में रोजगार की संभावना को देखते हुए आगामी सत्र में श्रमिकों के बच्चों को योग और वेलनेस में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ने और उनका समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत मानचित्रक के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद प्रदेश में अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता और सुशासन का प्रमाण है।
यहाँ पर सख्त नकल कानून में लागू की और वो नकल का कानून की बड़ा सख्त है, उसको उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है। आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया था। उसका असर हुआ, उसका प्रभाव हुआ कि विसाबों में 30,000 से अधिक नियुक्तियां अधिकतर संपन्न हुई। और आप लोग खुद देख रहे होंगे जी, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं वो कोई शोध सिफारिश से नहीं आ रहा, वो इनकी नकल मात्याओं से साठ नाट करके नहीं आ रहा। आप लोग सर इसके उदाहरण है, ये पारदर्शिता प्रभाव है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
चारधाम यात्रा से पहले आज प्रदेश के 7 जिलों में मॉकड्रिल के माध्यम से आपदा की तैयारियों को परखा गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस अभ्यास के जरिए यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों और समन्वय क्षमता को परखा गया। एक रिपोर्ट।
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से संचालित हुई मॉकड्रिल में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और देहरादून जिलों के अधिकारियों और विभिन्न विभागों की टीमों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान संबंधित जिलों में सड़क दुर्घटना, हेलीकॉप्टर हादसा, भूकंप, अग्निकांड, भगदड़, खराब मौसम, बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसे विभिन्न आपदा परिदृश्यों पर अभ्यास किया गया। केंद्रीय एजेंसियों, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की प्रभावशीलता को परखा। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए यह अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, संसाधनों के उपयोग और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों के अनुसार इस अभ्यास से चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को और मजबूत किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
पिथौरागढ़ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिलाधिकारी आशीष भटगाई के नेतृत्व में संचालित मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम प्रभावी साबित हो रहा है। आज जिला कार्यालय सभागार में कार्यक्रम का चौथा संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज थल की 26 छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर छात्राओं को विभिन्न शासकीय कार्यालयों का शैक्षिक भ्रमण कराने के साथ ही महिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनका सीधा संवाद किया गया। जिलाधिकारी ने छात्राओं को ईमानदारी, अनुशासन, करुणा, धैर्य और आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी तथा अनुशासन और सफलता का मूल मंत्र बताया।
मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का के चौथे चरण का आज यहाँ पे आयोजन किया गया था। और जैसा इस कार्यक्रम का हमारा फॉर्मेट है, इसमें एक्सपोजर विजिट भी कराई जाती है। जिले में जो कलेक्ट्रेट का ऑफिस है, विकास भवन है, एसपी ऑफिस है और सीएमओ ऑफिस है, तो उन सबका विजिट कराया जाता है। साथ ही समस्त बालिकाएं जो यहाँ पर आई है उनके एस्पिरेशन को आज हम लोगों ने सुना है और हमारी जो महिला अधिकारी है उनके साथ भी उनका 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ है। इसके माध्यम से जो बालिकाएं हैं उनको एक मोटिवेशन यहाँ पर मिला है।
वहीं छात्राओं ने इस अनुभव को प्रेरणादायक बताया। छात्रा अंशिका चौधरी और करिश्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें अपने लक्ष्य और करियर को लेकर स्पष्ट दिशा मिली है।
आज हमको इस कार्यक्रम में बुलाया, हमको बहुत खुशी हुई। जो आगे हमको जो करना है उसके बारे में हमको इतने सारे अधिकारियों का सपोर्ट मिला, उनसे कुछ टिप्स मिले और उन्होंने हमको बताया कि हमको क्या क्या करना चाहिए, किस टाइप से पढ़ाई करनी चाहिए कि हम अपने जो गोल्स हैं हम उनको हासिल कर सकें। मैं सर्वप्रथम जिला अधिकारी को धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने गाँव से बच्चे उठाकर उनके लक्ष्यों को अपने सामने रखने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। फिर क्योंकि गाँव के बच्चों के सपने उनके घर के चार दीवारी तक ही सीमित रह जाते हैं, पर इससे जो के लक्ष्य उनके समक्ष रहे तो हमें आशा है कि हम अपने जो हमारे लक्ष्य हम उन पे सफलता प्राप्त कर सकेंगे।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के सहस्त्रधारा में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मजाडा, कार्लीगार्ड, फुलेत, सरोना, बगरा, धोरण, गलजवाड़ी आदि के 49 आपदा प्रभावित दुकानदारों को 19,60,000 की सहायता राशि वितरित की। ये सहायता राशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत की गई है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान श्री जोशी ने सहस्त्रधारा में आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई दुकानों के स्थान पर नवनिर्मित दुकानों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के पुनर्निर्माण से स्थानीय व्यापारियों को फिर से आजीविका का साधन मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना का पहला चरण शुरू राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वगणना कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। कहा, पलायन रोकने के लिए श्रमिकों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार दिया जाए कौशल प्रशिक्षण। प्रदेश के 7 जिलों में हुई मॉक ड्रिल, चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों और समन्वय क्षमता को परखा गया और पिथौरागढ़ में मेरा सपना मेरा लक्ष्य का 4th संस्करण आयोजित, छात्राओं को मिला प्रशासनिक अनुभव और करियर मार्गदर्शन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।